ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਂਝੇ ਨੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਿਸ ਕੋਲ ਜਾਏਗੀ, ਕਸਟਡੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਦੌਲਤ ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਕੋਲ ਰਹਿਣਗੇ।
SNS ਲੋਅਰਸ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਕਤ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਜਾਣਨ ਲਈ ਜਾਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ SNS ਲੋਅਰਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 416-655-2000।
सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
रेडियो भारत सुनने वाले सभी श्रोताओं को अरविंद भारद्वाज का नमस्कार। रेडियो भारत के आज के कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। आज 27 जुलाई 2019 दिन शनिवार, तदनुसार विक्रमी संवत 2076 के श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की दशम तिथि। समय सायंकाल के 4:01 हुआ चाहता है। आप सबसे लगभग एक घंटे तक आपका और हमारा साथ बना रहेगा। दोस्तों, रेडियो भारत में जैसा कि आप जानते हैं, इस साप्ताहिक कार्यक्रम में हम बात करते हैं अपने प्यारे भारत की, अपने प्यारे हिंदुस्तान की, भारत के इतिहास की और भारत के वर्तमान और भविष्य की। कुछ गीत संगीत हुआ करता है और कुछ पूरे सप्ताह में हुए विश्व के, भारत के और कनाडा के महत्वपूर्ण समाचारों और घटनाओं पर चर्चा होती है। कार्यक्रम का आरंभ आइए एक बेहद खूबसूरत गीत से करते हैं, जैसा कि हम हर बार किया करते हैं। आवाज सदाबहार कलाकार मोहम्मद रफी साहब की है और फिल्माया गया है महमूद साहब पर। महमूद साहब के ऊपर कुछ बेहद खूबसूरत नगमे ब्लैक एंड वाइट फिल्मों में जो फिल्माए गए थे, तो ये एक नगमा मेरी नज़र में पड़ा तो मुझे लगा कि आप सबके साथ इसको साझा करना चाहिए ताकि आप भी इसका आनंद ले सकें। आइए सुनते हैं और कार्यक्रम का आरम्भ करते हैं।
Ya Habibi, Ya Habibi, Ya Habibi. अच्छा सा रख दो अपने दीवाने का नाम, तुम भी कुछ अच्छा सा रख दो अपने दीवाने का नाम। मैंने रखा है मोहब्बत अपने अफसाने का नाम, मैंने रखा है किस कदर खूबसूरत है तेरे दीदार की दुनिया, मेरी नजरों की जन्नत है जुल्फ रुखसार की दुनिया। किस कदर खूबसूरत है तेरे दीदार की दुनिया, तुम्हें पहचाना है खुदा को समझा है, खुदा को जाना है। मैंने रखा है मोहब्बत अपने अफसाने का नाम, मैंने रखा है। दिल पे तुम हाथ जो रख दो, मेरी तस्कीन हो जाए। जान मन जिंदगी मेरी कुछ तरंगीन हो जाए। दिल पे तुम हाथ जो रख दो, मेरी तस्कीन हो जाए। नजर मिल जाने दो, कयामत आती है, कयामत आने दो। मैंने रखा है मोहब्बत अपने अफसाने का नाम, मैंने रखा है। इश्क पर क्या गुजरती है हुस्न, ये राज क्या जाने। मेरे दिल के तड़पने का कोई अंदाज क्या जाने। इश्क पर क्या गुजरती है हुस्न, ये राज क्या जाने। है दिल परवाने का कोई हमसे पूछे, मजा जल जाने का। मैंने रखा है मोहब्बत अपने अफसाने का नाम, मैंने रखा है मोहब्बत। तुम भी कुछ अच्छा सा रख दो अपने दीवाने का नाम, तुम भी कुछ अच्छा सा रख दो अपने दीवाने का नाम। मैंने रखा है मोहब्बत अपने अफसाने का नाम,
मैंने रखा है मोहब्बत अपने अफसाने का नाम, तुम भी कुछ अच्छा सा रख दो अपने दीवाने का नाम। इस खूबसूरत गीत के साथ हमने इस प्रोग्राम का आगाज किया। आप इस प्रोग्राम को 6475571017 डायल कर मोबाइल पर भी सुन सकते हैं, या आप अगर अपने लैपटॉप पर हैं या मोबाइल पर हैं तो eawaz.com पर आप ये प्रोग्राम लाइव सुन सकते हैं। प्रोग्राम के बारे में, रेडियो भारत के बारे में अगर आप बात करना चाहते हैं, कोई सलाह देना चाहते हैं, तो आप 6476400555 पर प्रोग्राम के बाद बात कर सकते हैं। रेडियो भारत हर शनिवार शाम 4 से 5 आपकी सेवा में उपस्थित रहता है। इस खूबसूरत गीत के बाद आइए कुछ हिंदुस्तान की कुछ बड़ी खबरों पर नज़र डालते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, कारगिल युद्ध के 20 साल पूरे होने पर शनिवार को एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कारगिल युद्ध के 20 साल पूरे होने पर नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शनिवार को एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। नरेंद्र मोदी भारत के ऐसे प्रधानमंत्री पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कारगिल विजय के दिवस पर देश को संबोधित किया है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने एक बार फिर पाकिस्तान पर जोरदार हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान शुरू से ही कश्मीर को लेकर छल कपट करता रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कारगिल विजय दिवस के अवसर पर आज हर देशवासी शौर्य और राष्ट्र के समर्पित एक प्रेरणादायक गाथा को स्मरण कर रहा है। आज के अवसर पर मैं उन सभी शूरवीरों का नमन करता हूं जिन्होंने कारगिल की चोटियों से तिरंगे को उतारने का षड्यंत्र असफल किया। उन्होंने कहा, कारगिल में विजय भारत के वीर बेटे बेटियों के अदम्य साहस की जीत थी। कारगिल में विजय भारत के सामर्थ्य और संयम की जीत थी। कारगिल में विजय भारत के संकल्पों की जीत थी। और कारगिल में विजय भारत के मर्यादा और अनुशासन की जीत थी। उन्होंने कहा कि अपना रक्त बहाकर जिन्होंने सर्वस्व निछावर किया और उन शहीदों को, उनको जन्म देने वाली वीर माताओं को भी मैं नमन करता हूं। सैनिक आज के साथ की आने वाली पीढ़ी के लिए अपना जीवन बलिदान करते हैं। हमारा आने वाला कल सुरक्षित रहे उसके लिए वो अपना वर्तमान स्वाहा कर देते हैं। सैनिक जिंदगी और मौत में भेद नहीं करते और उनके लिए कर्तव्य ही सब कुछ होता है। युद्ध सरकारें नहीं लड़ती, युद्ध पूरा देश लड़ता है। सरकारें आती जाती रहती हैं लेकिन जो देश के लिए मरने के जीने की परवाह नहीं करते वे अजर अमर होते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सैनिक आने वाले दिनों के लिए खुद को मिटा देते हैं। मैं 20 साल पहले कारगिल तब भी गया था जब युद्ध अपने चरम पर था। दुश्मन ऊंची चोटियों पर बैठकर अपने खेल खेल रहा था। एक साधारण नागरिक के नाते मैंने मोर्चे पर जुटे अपने सैनिकों के शौर्य को, उस मिट्टी को जाकर नमन किया था। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि पाकिस्तान शुरू से ही कश्मीर को लेकर छल करता रहा है। 1948, 1965, 1971 में उसने यही किया लेकिन 1999 में उसका छल पहले की तरह एक बार फिर छल की छलनी कर दी गई। बीते 5 वर्षों में सैनिकों और सैनिकों के परिवारों के कल्याण से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। आज़ादी के बाद दशकों से जिसका इंतजार था, उस वन रैंक वन पेंशन लागू करने का कामयाबी से हमारी सरकार ने ही कार्य पूर्ण किया है। भारत का इतिहास गवाह है कि भारत कभी आक्रांता नहीं रहा है, यानी इन्वेडर नहीं रहा है। मानवता के हित में शांतिपूर्ण आचरण हमारे संस्कारों में है। हमारा देश इसी नीति पर चला है। भारत में हमारी सेना की छवि देश की रक्षा की है और विश्व में मानवता और शांति के रक्षक भी हैं। कारगिल के समय अटल जी ने कहा था कि हमारे पड़ोसी को लगता था कि कारगिल को लेकर भारत प्रतिरोध करेगा, विरोध प्रकट करेगा और तनाव से दुनिया डर जाएगी, लेकिन हम जवाब देंगे, प्रभावशाली जवाब देंगे, ऐसी उसको उम्मीद नहीं थी। आज लड़ाइयां अंतरिक्ष तक पहुंच गई हैं और साइबर स्तर पर भी लड़ी जाती हैं, इसलिए सेना को आधुनिक बनाना हमारी प्राथमिकता है। जल थल नभ सभी जगह हमारी सेना अपने उच्चतम शिखर को प्राप्त करने का सामर्थ्य रखे और आधुनिक बने, ये हमारा प्रयास है। कारगिल युद्ध के बाद अगली खबर कश्मीर से ही लेते हैं। कश्मीर में आतंक विरोधी अभियान और कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए 10,000 केंद्रीय बल जवानों को कश्मीर घाटी में भेजने का सरकार ने आदेश दे दिया है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और अलगाववादियों ने इस केंद्र पर फैसले पर आपत्ति जताई है और इस फैसले को घाटी के लोगों में डर का माहौल पैदा करने वाला बताया है। महबूबा मुफ्ती और शाह फैजल, जो पूर्व आईएएस और जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि घाटी में सीपीएफ के अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती करने वाले गृह मंत्रालय की विज्ञप्ति से चिंता का माहौल बना हुआ है। किसी को यह पता नहीं कि अचानक से इस सुरक्षा बलों को क्यों इकट्ठा किया जा रहा है। अफवाह है कि कुछ भयावह होने वाला है। क्या धारा 35(1) को लेकर है, यह लंबी रात होगी। हैरानी है जिन लोगों का, वहां पर कोई बेस नहीं है, जिस पार्टी को एक भी सीट कश्मीर के पिछले इलेक्शंस में नहीं मिली, वो लोग वहां के लोकल लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं और देश को और समाज को भड़काने वाले बयान देते हैं। 10,000 जवानों की अगर, केंद्रीय बल के जवानों को अगर कश्मीर भेजा गया है तो अगर आप गलत काम कर रहे हैं तभी आपको डर होगा, वरना 10,000 क्या, 1,00,000 जवान भी अगर सरकार भेजने का फैसला लेती है और अगर आप अपनी जगह सही हैं और कोई गैर कानूनी या समाज विरोधी और देश विरोधी काम नहीं कर रहे हैं तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन इन दोनों लोगों के बयानों से, शाह फैजल और जो कि पूर्व आईएएस ऑफिसर हैं और उन्होंने अपनी पार्टी शुरू की थी रिज़ाइन कर, और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती जो कि वैसे ही उधार की ज़िंदगी जी रही हैं और वहाँ से उन लोगों से जो ऑब्जेक्शन आया है वो बड़ा सरप्राइजिंग है। आप सरकार के किसी नॉर्मली सी की एक फैसले को अगर आप इस तरह से रिएक्ट करते हैं तो बड़ा बड़ा संगीन आप माहौल पैदा करते हैं घाटी में और लोगों में। खैर, आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री ने 25 जुलाई को केंद्रीय सशस्त्र बलों की 100 कंपनियों को तत्काल घाटी में तैनात करने का आदेश दिया था। हर एक कंपनी में 90 से 100 कर्मी मौजूद रहते हैं। इन जवानों को कश्मीर घाटी में आतंकवाद निरोधक ग्रिड को मजबूती प्रदान करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात किया जाएगा। केंद्र सरकार के इस फैसले ने कश्मीर की घाटी में राजनीतिक दलों और अलगाववादियों में हलचल तेज कर दी है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर कहा कि घाटी में अतिरिक्त 10,000 सैनिकों को तैनात करने के फैसले ने लोगों में भय पैदा कर दिया है। कश्मीर में सुरक्षा बलों की कोई कमी नहीं है। खैर, देखिए, ये जो फैसला आया है, जब हम आपको बता दें साथ में कि जो सुरक्षा सचिव हैं अजीत डोभाल, वो उन्होंने कश्मीर की यात्रा की थी, अभी 2 दिन वहाँ पर थे और उन्होंने आकर जो अपनी रिपोर्ट सबमिट की है उसके आधार पर ये फैसला लिया गया है। और आम आदमी, जो बीजेपी के प्रवक्ता का कहना है कि आम आदमी वहाँ के माहौल से खुश है और उस माहौल को और नॉर्मल करने के लिए ये अतिरिक्त दल वहाँ लगाए गए हैं और आने वाले समय में चुनाव भी हैं और कुछ तैयारियां उसको देखते हुए भी की जा रही हैं। लेकिन मेरा अपना मानना है कि 10,000 लोगों की तैनाती हो सकता है वहां कुछ सरकार बड़ा कश्मीर पर फैसला लेने जा रही हो उसके तहत उससे सावधानी बरतते हुए ये काम किया गया हो और ये चीज़ हम जो है आने वाले समय में देखेंगे कि कश्मीर में सरकार कुछ बड़ा फैसले की जुगत में है या कुछ कश्मीर के ऊपर कोई ठोस फैसला सरकार लेना चाह रही है या नहीं। बट खैर, आप जो इस समय सरकार है उसके जो फैसले के ऊपर आपत्ति उठाने वाले, खासकर जब आपका वहाँ पर लोगों में कोई आपका बेस नहीं है, आपको एक भी सीट नहीं मिली है वहाँ से, कोई फॉलोशिप आपकी नहीं है, तो उन लोगों की बात सुनने का कोई मतलब नहीं है। सरकार ने यह फैसला क्यों लिया ये आने वाले वक्त में हम सबको पता लग ही जाएगा। हिंदुस्तान से कश्मीर और कारगिल के ऊपर इन दो खबरों, बड़ी खबरों के बाद आइए माहौल को कुछ हल्का करते हैं और एक और गीत जो नॉर्मल जो हीरो जिस टाइप के हमारे यहाँ होते हैं उन हीरो पे जो नहीं फिल्माया गया वो गीत मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। और ये गीत भी अगर आप YouTube पे जाके देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि IAS जौहर एक कॉमेडियन हुआ करते थे, वो जब शुरू में हीरो आए थे उनके ऊपर ये गीत फिल्माया गया था। मुकेश साहब की आवाज़ में बेहद खूबसूरत नगमा है, आइए ये नगमा भी आपको सुनवाते हैं और कार्यक्रम में लौट कर वापस आते हैं।
धीरे रे चलो मोरी बांकी हिरनिया, धीरे रे चलो मोरी बांकी हिरनिया, कमर न लच के हाय सजनिया, धीरे रे चलो मोरी बांकी हिरनिया, धीरे रे चलो मोरी बांकी हिरनिया। तेरी बिखरी जुल्फे देख देख ये मस्त घटा शर्माई हो, देखो मस्त घटा शर्माई, तेरा रूप जो देखा झूम झूम ली बिजली ने अंगड़ाई होली, बिजली ने अंगड़ाई, काले बाल गोरा रू जैसे साए में हो धूप, तुझे देख जीरा भरमा ही गया, ओ
धीरे रे चलो मोरी बाकी हिरनिया, धीरे रे चलो मोरी बाकी हिरनिया, कमर न लच के हाय सजनिया, धीरे रे चलो मोरी बाकी हिरनिया, धीरे रे चलो मोरी बाकी हिरनिया। क्यों दिल की राहें छोड़ छोड़ ये फूल चला हारों पे, ये फूल चला हारों पे, तेरा पिघले ऐसे रूप के जैसे मोम हो अंगारों पे, जैसे मोम हो अंगारों पे, तेरा मुखड़ा गुलाबी तेरी चाल शराबी, मुझे राम कसम नशा ही गया। ओ धीरे रे चलो मोरी बाकी हिरनिया, धीरे रे चलो मोरी बाकी हिरनिया, कमर न लच के हाय सजनिया, धीरे रे चलो मोरी बाकी हिरनिया, धीरे रे चलो मोरी बाकी हिरनिया।
आइए इस खूबसूरत गीत के बाद प्रोग्राम में वापसी करते हैं। आप इस प्रोग्राम को 6475571017 डायल करके सुन सकते हैं। eawaz.com पर भी ये प्रोग्राम सुना जा सकता है। रेडियो भारत में बात करने के लिए 6476400555 पर प्रोग्राम के बाद आप संपर्क कर सकते हैं। कश्मीर के बाद आइए देखते हैं कुछ हिंदुस्तान से एक दूसरी खबर पर भी नज़र डालते हैं। साथ साथ मुझे लगता है कि मुझे आपको बता देना चाहिए, जो मैं पिछली खबर पढ़ रहा था आपके लिए कि 10,000 केंद्रीय सुरक्षा बलों की एक्स्ट्रा तैनाती की गई है कश्मीर में, तो वो उम्मीद है कि वो 35A के ऊपर शायद सरकार जो है वो अनुच्छेद या आर्टिकल जिसको आप बोलते हैं उसके लिए सरकार शायद कोई फैसला लेने जा रही है। 35A के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान का ये अनुच्छेद या आर्टिकल है जो जम्मू और कश्मीर राज्य विधान मंडल को स्थायी निवासी परिभाषित करने तथा उन नागरिकों को विशेष अधिकार प्रदान करने का अधिकार देता है। यह भारतीय संविधान में जम्मू और कश्मीर सरकार की सहमति से राष्ट्रपति के आदेश पर जोड़ा गया था, जो कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा 14 मई 1954 को जारी किया गया था। तो अगर ये अनुच्छेद भारत सरकार हटाने की बात करती है, जैसा कि ऐसे उम्मीद की जा रही है कि जो अतिरिक्त सुरक्षा बल हैं उनकी तैनाती इससे भी संबंधित हो सकती है, तो एक बड़ा कदम होगा कश्मीर की सियासत में, कश्मीरियों के लिए, कश्मीरियत के लिए, और वहाँ से एक जो स्पेशल जो रेजिडेंट स्टेटस है वो छिन जाएगा, और उम्मीद है कि धीरे धीरे भारत के आम लोग भी वहाँ पर जो है वो अपनी ज़मीन खरीद सकेंगे, अपना बिजनेस कर सकेंगे, और स्पेशल जो स्टेटस है वो कश्मीर का जाता रहेगा, जो कि जाना चाहिए भी, क्योंकि अभी बहुत साल हो गए हैं, बहुत सी फैसिलिटीज़ वहाँ पे दी गई हैं, और अगर इसी मुझे लगता है कि कश्मीर में शांति के लिए 35A और धारा 370 जो है वो एक बड़ी रुकावट है, और अगर ये हट जाए तो कश्मीरियों को फ़ायदा होगा, और भारत का भी जो इतना खर्चा होता है आर्मी के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेशन कंटिन्यूसली रहती है और भड़काऊ चीज़ें भी रहती हैं, और जो लड़ाके हैं वहाँ पर जो पैसा लेकर लड़ाई करते हैं इस्लाम के नाम पर या किसी और चीज़ों के नाम पर, वो लोगों का आना वहाँ पर बंद होगा और वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा, और भारत से जो जुड़ने वाले लोग हैं वो जो मेन स्ट्रीम में आने के लिए उन लोगों को मौका मिलेगा। खैर, ये थी 35A की बात। आइए दूसरी खबर लेते हैं। सांसद आजम खान की दूसरी खबर है। समाजवादी पार्टी के सांसद हैं आजम खान साहब, जैसे कि आप जानते हैं अपनी लच्छेदार भाषा के लिए और एक खूबसूरत अंदाज के लिए जाने जाते हैं, लेकिन ये लच्छेदार भाषा और शायराना अंदाज इस बार उन्हें थोड़ा महंगा पड़ गया। उनकी टिप्पणी जो कि भाजपा सदस्य रमा देवी पर की गई थी, शुक्रवार को लोकसभा के सांसदों ने निंदा की है उस टिप्पणी की और उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है। आपको बता दें कि जो मीटिंग बुलाई गई है, सांसद और स्पीकर इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि आजम खान को उनकी टिप्पणी के लिए संसद में माफ़ी मांगनी होगी। सभी पार्टियों के सांसदों के साथ मीटिंग हुई थी। अगर आजम खान ने माफ़ी नहीं मांगी तो स्पीकर कार्रवाई करेंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, निर्मला सीतारमण और रविशंकर प्रसाद उन नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने समाजवादी पार्टी के नेता से माफ़ी की मांग की है। प्रसाद ने कहा कि माननीय रमा जी वरिष्ठ और सुलझी हुई नेता हैं, वे अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठी थी, उनके खिलाफ जो टिप्पणी की गई है उसके शब्द इतने शर्मिंदगी भरे हैं कि मैं बोल नहीं सकता हूं। आप जानते हैं कि ये जो टिप्पणी की गई थी, उन्होंने कहा था कि आजम खान साहब ने कि आप मुझे इतनी अच्छी लगती हैं कि मेरा मन करता है आपकी आंखों में आंखें डाले रहूं। खैर, ये टिप्पणी जब उन पर की गई थी तो आजम खान साहब की टिप्पणी के समय रमा देवी अपनी जो स्पीकर की चेयर थी पीठासीन अधिकारी के पतौर पर उस समय बैठी हुई थी, और जोरदार जब हंगामा हुआ उनकी टिप्पणी के बाद तो उन्होंने फिर कहा मैं आपको अपनी प्यारी बहन मानता हूं और बहन के नाते मैंने ये बात कही है। लेकिन तब तक तीर निकल चुका था और राजनीति में आपको मालूम है जब तीर निकल जाता है तो उसको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो वो तीर लगा जाकर सीधा सीधा जो महिला सांसद हैं उनके सम्मान के ऊपर और उनकी जो मर्यादा के ऊपर, तो उनसे माफ़ी मांगने को ये कहा जा रहा है। स्मृति ईरानी ने भी कहा है कि यह पुरुषों समेत सभी सांसदों पर धब्बा है। उन्होंने कहा कि मेरे 7 साल के संसदीय कार्यकाल में किसी पुरुष ने सदन में इस तरह की हिमाकत नहीं की है। यह विषय महिला का नहीं है, इस सदन में और दूसरे सदन में कई पुरुषों ने अपने सामाजिक राजनीति कार्यकाल में महिलाओं के संरक्षण के लिए आवाज उठाई है, यह महिला नहीं पुरुषों का भी अपमान है। खैर, ये उड़ता तीर था तो वो कहां जाके लगेगा ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल जो है उनको माफी मांगने के लिए सभी पार्टियों से दबाव है। तो ये थी भारत से कुछ खबरें। एक बड़ी खबर जो ब्रिटेन से, जैसा कि आपको मालूम है बोरिस जॉनसन ने औपचारिक रूप से जो है वो कमान संभाल ली है। कंजर्वेटिव पार्टी के नेतृत्व की जंग शानदार तरीके से जीतने के बाद एक दिन बाद तकरीबन बोरिस जॉनसन ने बुधवार को औपचारिक रूप से ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री की कमान संभाल ली। 55 वर्षीय पूर्व विदेश मंत्री और लंदन के पूर्व मेयर जॉनसन ने महारानी एलिजाबेथ द्वितीय से मुलाकात की, जिन्होंने उसको नए प्रशासन का गठन करने को कहा है। बकिंघम पैलेस के एक बयान में यह जानकारी दी गई है। अब खबर आ रही है कि बोरिस जॉनसन के कैबिनेट में भारतीय मूल के लोगों को भी जगह मिली है। बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री टेरेसा मे की ब्रेक्जिट रणनीति के मुखर आलोचकों में शामिल प्रीति पटेल ने बुधवार को अपने प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की कैबिनेट में गृह मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है। इस प्रकार वह ब्रिटेन में भारतीय मूल की पहली गृह मंत्री बनी है, जो एक काफ़ी महत्वपूर्ण पोस्ट है, तो नेचुरली ये बात अपने आप बहुत बड़ी बन जाती है। प्रीति पटेल कंजर्वेटिव पार्टी के नेतृत्व के लिए बोरिस बेकर अभियान की प्रमुख सदस्य थीं और पहले से संभावना थी कि उन्हें नई कैबिनेट में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। उनकी नियुक्ति की घोषणा से कुछ घंटे पहले ही कहा गया कि ये महत्वपूर्ण है कि कैबिनेट आधुनिक ब्रिटेन और आधुनिक कंजर्वेटिव पार्टी को प्रदर्शित करे। गुजराती मूल की नेता प्रीति ब्रिटेन में भारतीय मूल के लोगों से सभी कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि होती हैं और उन्हें ब्रिटेन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्साही प्रशंसकों के रूप में भी देखा जाता है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपनी कैबिनेट की पहली नियुक्ति के तहत पूर्व गृह मंत्री साजिद जावेद को वित्त मंत्री बनाया है। वे फिलिप हेमंड की जगह लेंगे। सरकार ने बुधवार को एक बयान में यह जानकारी दी। सामान्य पृष्ठभूमि के पूर्व बैंकर जावेद प्रधानमंत्री पद के दावेदारों में शामिल थे, लेकिन कंजर्वेटिव पार्टी के साथ सांसदों से पर्याप्त सहयोग नहीं मिलने पर उन्होंने जॉनसन के नाम पर अपनी मंजूरी दे दी। इसके अलावा बोरिस जॉनसन ने बुधवार को डोमिनिक रॉब को ब्रिटेन का नया विदेश मंत्री नियुक्त किया। सरकार ने बयान जारी करके ये जानकारियां दी हैं। इन खबरों के बाद बहुत सी खबरें रिलेटेड हैं पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की यूएस विजिट से, वो हम अगले सेगमेंट में आपको धीरे धीरे बताते रहेंगे और काफ़ी बात करेंगे जो ट्रंप ने कमेंट किया है और इमरान खान साहब की जो विजिट हुई है यूएस की, उससे पूरे जो क्षेत्र है या खित्ता जिसको आप बोलते हैं या रीजन है साउथ एशिया का, उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा, तो हम इसके ऊपर बात करेंगे। और आइए कुछ रिकॉर्डेड कमर्शियल ले लेते हैं और प्रोग्राम में लौट कर वापस आते हैं।
कनाडा आए हुए अरसा हो गया लेकिन अपनी फैमिली को बुलाने की हसरत अभी तक अधूरी है। ब्लू ओशन इमिग्रेशन जो कि स्पेशलाइज करते हैं एक्सप्रेस एंट्री, फेडरल स्किल्ड एंड ट्रेड वर्कर, स्टडी वर्क परमिट, स्पाउसल स्पॉन्सरशिप, सुपर वीजा, विजिटर वीजा, पेरेंटल स्पॉन्सरशिप और अपील्स में। लोकेटेड एट 7895 ट्रेनमेयर ड्राइव, यूनिट 211, मिसिसागा। कम टू योर ड्रीम नेशन थ्रू ब्लू ओशन इमिग्रेशन। कॉन्टैक्ट राजीव रामपा फ्रॉम ब्लू ओशन इमिग्रेशन, कॉल 416-500-8036।
यार पिछले 5 साल से बिजनेस जहां था वहीं खड़ा है,
तो ग्रो क्यों नहीं कर रहा है?
ग्रो करने के लिए पैसे चाहिए और पैसे तब आएंगे जब ग्रोथ होगी। समझ नहीं आती कहाँ जाऊँ।
बैंक से लोन लो और प्रोग्रेस करो।
बैंक लोन? बैंक तो मुझे लाइन ऑफ क्रेडिट भी नहीं दे रहा, सिर्फ पेपर वर्क और भाग दो।
फिर टाइम वेस्ट मत करो बॉस, सीधा कनाडा वाइड फाइनेंशियल ग्रुप के प्रमोद गोयल से मिलो और समझो हो गई प्रॉब्लम सॉल्व।
पर यार,
पर वर्क कुछ नहीं, काम करते हैं चुटकियों में, फीस भी रीजनेबल, लेंगे भी काम होने के बाद। और कुछ
यार, ये थोड़ी देर जरा मेरा काम संभालो, मैं गोयल साहब से मिलकर आता हूँ।
For all kinds of business and commercial loans, call Canada Wide Financial Group 647-699-888, 647-699-888.
डीपी जैन सीपीए सीजीए 30 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है और 13 साल से फुल टाइम प्रैक्टिस कर रहे हैं कनाडा में। एक्सपर्ट हैं बिजनेस लोन्स, लाइन ऑफ क्रेडिट्स, कमर्शियल मॉर्गेजेस, बिजनेस कंसल्टिंग और एडवाइजरी, कॉम्प्लेक्स कॉर्पोरेट पर्सनल और बिजनेस टैक्सेस, कंपनी कॉरपोरेशन, बिजनेस रजिस्ट्रेशन, सीआरए ऑडिट्स, एचएसटी, पेरोल मैटर्स और अकाउंटिंग। आप उन्हें कॉल कर सकते हैं 416-305-0080 पर। डीपी जैन सीपीए सीजीए, आप उन्हें अपनी अकाउंटिंग की किसी भी तरह की समस्या के लिए 416-305-0080 पर कॉल कर सकते हैं। इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर संजीव मलिक कहते हैं कि डू नॉट गो फॉर चीपेस्ट इंश्योरेंस, गो फॉर द बेस्ट बेनिफिट्स ऑफ इंश्योरेंस। एक्सपर्ट हैं विजिटर टू कनाडा मेडिकल इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस और न्यू इमिग्रेंट इंश्योरेंस में, लाइफ डिसेबिलिटी और क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस में भी ये माहिर हैं। ग्रुप बेनिफिट्स में डेंटल, हेल्थ और विजन के सभी प्लान शामिल हैं। सभी तरह की मेजर इंश्योरेंस कंपनीज के साथ डील करते हैं। इंश्योरेंस की सही बात संजीव मलिक के साथ 647-883-4445 संजीव मलिक साहब से आप बात कर सकते हैं इंश्योरेंस की, लाइफ इंश्योरेंस की और बाकी इन सभी इंश्योरेंस की आप उनसे जानकारी ले सकते हैं। 647-883-4445 647-883-4445। पारस चोपड़ा जी 6476801284 मॉर्टगेज इंटेलिजेंस से संबंध है पारस जी का। कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज के सभी तरह के बेस्ट रेट्स के लिए आप इनसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं 6476801284 मॉर्टगेज इंटेलिजेंस से संबंध है इनका। आप अपने अच्छे कोर्ट्स के लिए, अच्छे मॉर्टगेज रेट्स के लिए, कमर्शियल हो या रेजिडेंशियल, आप बात कर सकते हैं पारस जी से। प्रवीण दलाल जी रेड स्टार रियलिटी से संबंध है इनका और सेंचुरी 21 के साथ हैं 6472695666 पर आप प्रवीण दलाल जी से अपनी रियल स्टेट संबंधी सभी सलाहें ले सकते हैं और प्रवीण दलाल.com से भी आप इनके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। काफ़ी लाइसेंसेज हैं बैक होम में भी और यहाँ पर भी, काफ़ी एक्सपीरियंस है और रियल एस्टेट से आप किस तरह से पैसा बना सकते हैं, ही इज़ परफेक्ट पर्सन टू कॉल। एंड माल्टन एरिया में स्पेसिफिकली इनकी काफ़ी जो है एक्सपर्टीज़ हैं, तो आप इनसे बात कीजिए 6472695666 प्रवीण दलाल जी। आपके ऑटो, होम और कमर्शियल इंश्योरेंस के लिए वन स्टॉप सोर्स हैं कोमल भारद्वाज। आप उन्हें 416-262-0414 पर कॉल कर सकते हैं और ट्रैवल इंश्योरेंस के लिए भी आप इनसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अच्छी सलाह और अच्छे कोट के लिए अभी फ़ोन उठाइए और बात कीजिए कोमल जी से और एक कंपिटिटिव कोट लीजिए और 416-262-0414 आपके ऑटो, होम और कमर्शियल इंश्योरेंस के लिए वन स्टॉप सोर्स। आइए आपको पाकिस्तान से संबंधित और प्रधानमंत्री इमरान खान की विजिट से संबंधित, जो यूएस विजिट उनसे संबंधित खबरों की तरफ ले जाने से पहले एक और खूबसूरत नगमा सुनाते हैं और प्रोग्राम में वापस इन खबरों को लेकर आते हैं। धन्यवाद।
ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, सूरज को धरती तरसे, धरती को चंद्रमा, धरती को चंद्रमा, पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा, प्यासी हर आत्मा। ओ मितवारे पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा, बूंद छुपी किस बादल में कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, अनजाने होठों पर तू पहचाने गीत है, पहचाने गीत है। कल तक जो बेगाने थे जन्मों के मीत है, जन्मों के मीत है। ओ मितवारे कल तक जो बेगाने थे जन्मों के मीत है, क्या होगा कौन से पल में कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में।
संजीव कुमार साहब पर फिल्माएं इस खूबसूरत गीत के बाद, आइए कुछ बात करते हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की यूएस विजिट के ऊपर। सबसे पहले प्रधानमंत्री इमरान खान तीन दौरे पर जब अमेरिका पहुंचे तो उनको पूरी तरह से तवज्जो नहीं मिली, ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि कोई भी यूएस का गवर्नमेंट ऑफिशियल उनको लेने नहीं आया और मेट्रो से सफ़र कर कर वो अपने जहां उनको रहना था, उनके जो एम्बेसडर थे उनके वहां पर उन्होंने अपना डेरा डाल लिया। उनके एजेंडे में आतंक, अफगानिस्तान में शांति और भारत के रिश्तों में चर्चा शामिल है, लेकिन जिस तरह से हवाई अड्डे पर पाकिस्तान प्रधानमंत्री का स्वागत हुआ है उसको देखकर कहा जा रहा है कि ट्रंप प्रशासन ने इमरान खान की अमेरिका यात्रा को खास तवज्जो नहीं दी। पैसा बचाने की मुहिम के तहत इमरान खान ने प्रधानमंत्री आवास की गाड़ी भेजने से लेकर भैंसे तक बेच दी हैं और अब वो अमरीकी दौरे को सबसे सस्ता दौरा बनाने की कोशिश में कमर्शियल फ्लाइट से वहां पहुंचे थे। और ऐसे में हर सरकारी दौरे पर आ रहे मेहमान को एयरपोर्ट पर मिलने वाला स्वागत उन्हें नहीं मिला। बता दें कि प्रधानमंत्री बनने के बाद इमरान खान का ये पहला अमेरिकी दौरा है। आर्थिक संकट से जूझ रहे अपने देश की खस्ता हालत को देखते हुए प्रधानमंत्री के विशेष विमान की बजाय कतर एयरवेज की फ्लाइट से वाशिंगटन पहुंचे, लेकिन एयरपोर्ट पर ना तो रेड कार्पेट दिखा और ना ही अमेरिका के आला अधिकारी। यही नहीं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को लेने अमेरिकी सरकार की कोई गाड़ी भी नहीं थी, लिहाजा इमरान खान को आम लोगों की तरह मेट्रो से जाना पड़ा। और इमरान खान की अमेरिका यात्रा पर ट्विटर में काफ़ी चुटकियां ली जा रही हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पाक पीएम का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि अपने देश का पैसा बचाया, इस मामले उन्होंने किसी तरह का अहम नहीं दिखाया। तो उनकी इस विजिट के ऊपर बहुत से, जिस तरह से उनका स्वागत हुआ, बहुत सी बातें की जा रही हैं, लेकिन मेरा अपना मानना है कि किस तरह से स्वागत हुआ वो इतना मायने नहीं रखता, क्योंकि ये एक जो विजिट थी ये अरेंज की गई थी, ये रिक्वेस्टेड थी पाकिस्तान की तरफ से, और ट्रंप प्रशासन ने उन्हें इनवाइट नहीं किया था। तो इन दोनों में तरह की विजिट में जो प्रोटोकॉल का जो सिस्टम है और जो जो एक एक जो एक सिस्टम बना होता है या जिस तरह की गाइडलाइंस विदेश मंत्रालय ने या सरकार ने दी होती हैं, अकॉर्डिंगली उस तरह से रिएक्ट किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब प्रधानमंत्री ट्रूडो की यात्रा इंडिया हुई थी, उस समय बहुत तरह के बवाल मचे थे कि ऐसे नहीं हुआ और वैसे नहीं हुआ, लेकिन ये सब चीज़ें जो समझदार लोग हैं उनको मालूम है, ये सब चीज़ें बहुत पहले से डिसाइडेड होती हैं कि कौन लेने आएगा, कैसे पहुंचेंगे, क्या होगा, किस वक्त पे कितनी मीटिंग होगी। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी देश का राष्ट्राध्यक्ष, चाहे वो प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो हो या प्रधानमंत्री इमरान खान हो, वो प्लेन लेकर निकल गए और वहाँ जाकर देख रहे हैं कि कौन लेने आया और कौन नहीं आया। ये सब पहले से बातचीत थी, क्योंकि ये जो विजिट थी इमरान खान साहब की, ये अमेरिका की तरफ से इन्वाइटेड नहीं थी, पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की थी, वो भी थर्ड पार्टी रिक्वेस्ट थी। तो उस तरह से उनका स्वागत जो है वो अपने प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंगली यूएस ने किया है। आपको ये भी बता दें कि जो उनकी यात्रा है वो प्रशासन से केवल ना केवल कभी उत्सुकता से नहीं दिखाई गई, वो इसलिए यूएस प्रशासन की तरफ से या ट्रंप प्रशासन की तरफ से, क्योंकि ये सऊदी अरब के राजकुमार मोहम्मद बिन सलमान की कोशिशों का नतीजा थी ये यात्रा। जानकारी एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने अपनी खास रिपोर्ट में दी है। अखबार ने लिखा कि पर्दे के पीछे महीनों चली कवायद के बाद इमरान खान की अमेरिका यात्रा मुमकिन हो सकी है, जिसे अमेरिका पाकिस्तान के द्विपक्षीय रिश्तों और पाकिस्तान में निवेश के लिए काफी अहम माना जा रहा है। इमरान खान के लिए दावतनामे का प्रबंध किसी तरह से करवाया गया, और कुशनर जो कि ट्रंप के वरिष्ठ सलाहकार हैं, इमरान की यात्रा की कोशिशें बीते साल दिसंबर में शुरू हुई थी, और जब ट्रंप ने इमरान को पत्र लिखकर उनसे अफगानिस्तान की शांति प्रक्रिया में मदद देने को कहा था। जैसा कि आप जानते हैं, ट्रंप प्रशासन जो है वो अफगानिस्तान से बाहर निकलना चाह रहा है, और उन्हें लगता है कि पाकिस्तान उसमें अहम भूमिका निभा सकता है, जो कि ठीक भी है। पाकिस्तान बहुत हद तक इन्वॉल्व रहा है, तो पाकिस्तान डेफिनेटली वहाँ पर एक क्योंकि बड़ा स्ट्रेटजिक लोकेटेड है, पाकिस्तान स्ट्रेटजिकली लोकेटेड है, तो वहाँ पे एक शांति प्रक्रिया में पाकिस्तान का एक अहम रोल हो सकता है। घटनाक्रम की जानकारी देने वाले अधिकारी ने नाम ना छापने की शर्त पर द एक्सप्रेस ट्रिब्यून से कहा है कि इमरान चाहते थे कि उनकी ट्रंप से आमने सामने की मुलाकात हो, जिससे वह क्षेत्र में पाकिस्तान की भूमिका को लेकर अमेरिका में पाए जाने वाले संशय को दूर कर सकें, लेकिन दोनों देशों के रिश्तों में तनाव और विश्वास की कमी के कारण अमेरिकी प्रशासन को इस मुलाकात के राजी कर पाना एक बड़ी टेढ़ी खीर साबित हुआ, और ऐसे में एक ही रास्ता समझ में आया कि अमेरिका प्रशासन को बाईपास कर सीधा ट्रंप से संपर्क साधा जाए। अधिकारी ने कहा कि यही वह मुकाम था जब गैर परंपरागत तरीके से इस्तेमाल पर विचार किया गया, और इसके बाद प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के कुशनर से निजी संबंध रखने वाले प्रिंस सलमान की मदद लेने के लिए उनसे संपर्क किया गया, और सत्ता में आने के बाद इमरान और सलमान के बीच कई मुलाकातें हुईं, जिसकी वजह से दोनों में एक अच्छा रिश्ता बन गया था और यह बाद में काम आया। खैर, ये तो जो बैकग्राउंड थी इमरान खान साहब की यूएस विजिट को लेकर और उनकी यात्रा को लेकर, किस तरह से स्वागत हुआ क्या नहीं हुआ वो एक बात की बात है, लेकिन किसी तरह से मुलाकात हुई और एक इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी के रूप में उन्होंने अपने आप को वहाँ प्रेजेंट किया और पाकिस्तान में इस चीज़ को बहुत हाइप से देखा जा रहा है। और इस समय जैसा कि आपको मालूम है, एक और कंट्रोवर्सी काफ़ी हुई कि जब उन्होंने, ट्रंप साहब ने बोल दिया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने मंगलवार को कहा कि कश्मीर के मुद्दे को हल के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्ताव पर वो खुश हैं। और लेकिन ये भी बता दें कि भारत की प्रतिक्रिया तुरंत आ गई थी और भारत के विदेश मंत्री ने, जो कि एस जयशंकर साहब हैं, उन्होंने अपनी जो उन्होंने विज्ञप्ति दी थी और जो संसद में भी बोला कि भारत का कोई भी प्रधानमंत्री, मोदी साहब को तो छोड़ ही दीजिए, कोई भी प्रधानमंत्री इस तरह की ऑफर नहीं दे सकता कि अमेरिका जो है भारत और पाकिस्तान के कश्मीर को लेकर किसी उसमें मध्यस्थता का रोल अपनाए। ट्रंप साहब ने क्या सोचकर बोला, अमेरिका प्रशासन को ये काफ़ी अब मुश्किल आ रही है कि उनकी जो स्टेटमेंट है उसको किस तरह से देखा जाए, मैनिपुलेट किया जाए, ताकि क्योंकि भारत ने तुरंत उसका डिनाइल भेज दिया था, जिससे जो ट्रंप का जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हैं या लोग जो लोग विदेश मंत्रालय में काम करते हैं, जो उनके उनके नाम के ऊपर विज्ञप्ति जारी करते हैं, उन लोगों को ये चीज़ संभालनी बड़ी मुश्किल हुई हुई है। अभी जो है वो जो यूएस है वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर काम कर रहा है कि इस तरह की स्टेटमेंट को किस तरह से दोबारा पेश किया जाए, ताकि ट्रंप ने जो बोला उसमें भी वो बुरे ना लगें और बैकफुट पे ना जाएं, ऐसा ना कि उन्होंने बोल दिया और चीज़ वापस ले ली। और हालांकि उनके लिए बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनका जो मंत्रालय है वो इस समय इस स्थिति पर काम कर रहा है कि भारत ने जो ये तुरंत डिनायल दिया है, इतना बड़ा डिनायल है, और भारत में काफ़ी, जैसा कि आप न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ चैनल्स में देख भी रहे होंगे, कि भारत में इस चीज़ को लेकर बहुत हंगामा हुआ। और हालांकि तुरंत डिनायल आ गया था, तुरंत जो है वो ये मना कर दिया गया था भारत की तरफ से कि ऐसी कोई भी बात प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप प्रशासन को या ट्रंप साहब को इन पर्सन या ऑफिशियल कभी भी नहीं कही। उसके बावजूद इस चीज़ को बहुत पाकिस्तान में भी बहुत इसको प्राइड की तरह देखा जा रहा है। और हालांकि अगर वो ऑफर करते भी हैं तो, और भारत वैसे तो ये चीज़ मानेगा नहीं, क्योंकि लाहौर जो जो एग्रीमेंट है और शिमला एग्रीमेंट के तहत कोई भी जो ये वार्ता है वो त्रिपक्षीय नहीं हो सकती, कोई भी मध्यस्थता नहीं कर सकता है, यह मामला भारत और पाकिस्तान ही निपटा सकते हैं, ये ऑलरेडी मुहैदा हो चुका है। लेकिन खैर, इमरान खान साहब यूएस आए थे और आर्थिक तंगी से जूझ रहा है पाकिस्तान इस समय, दोबारा से ब्लैकलिस्ट जो है होने की उसमें है। अभी तो ग्रे लिस्ट में बड़ी मुश्किल से तीन लोगों की, तीन देशों की जो उनको अप्रूवल थी उसके बाद आया था, लेकिन अभी वो सभी पॉइंट्स में 31 पॉइंट होते हैं, जैसा कि हमने पिछले प्रोग्राम में भी बताया था FATA के, उसमें अब जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसमें पाकिस्तान सभी 31 पॉइंट्स में पिछड़ गया है। तो अब कहीं पर उनको IMF ने भी लेटेस्ट फंडिंग उनकी रोक दी है, और पाकिस्तान जो अगर आर्थिक रूप से ब्रेक होता है तो एक बड़ी प्रॉब्लम की तरफ बढ़ सकता है। लेकिन जो इमरान खान साहब और उनकी गवर्नमेंट है वो चाह रही है कि जो ट्रंप साहब की इस समय जो जो भी उन्होंने बोला है मध्यस्थता को लेकर भारत और पाकिस्तान में, कश्मीर को लेकर, उस चीज़ को काफ़ी पॉजिटिविटी को लेकर चल रही है और अपने लोगों में प्रचार कर रही है कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हालांकि ऑफिशियल इसके ऊपर किसी भी देश का कोई स्टैंड नहीं है, हालांकि ऑफिशियल स्टैंड सिर्फ भारत ने दिया है कि इस तरह की कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। खैर, वो उनके अपने देश के लोग हैं, वो अगर उनको विश्वास करते हैं तो वेल एंड गुड। भारत ने US को भी और पूरे विश्व को भी और पाकिस्तान को भी ये क्लियर बता दिया है कि हम किसी भी तरह की मध्यस्थता नहीं बर्दाश्त करेंगे। इस खबर के साथ ही हम आपको एक और खबर जोड़कर बता देते हैं कि इमरान खान साहब ने ये भी कबूला है कि वहाँ पर पाकिस्तान में आज भी 40,000 आतंकी हैं। एक बड़ा बयान है उनका। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के किसी भी हिस्से से कश्मीर में प्रशिक्षण लिया हो और उनके मुल्क में ये 40,000 लड़ाके मौजूद हैं जिन्होंने अफगानिस्तान के किसी हिस्से या कश्मीर के हिस्से में प्रशिक्षण लिया है, ये खुद मान रहे हैं, और उनके मुल्क में मौजूद हैं, ऐसा चौंका देने वाला कबूलनामा है ये, और भारत के दावे की पुष्टि होती है कि उस पर हमला करने वाले आतंकवादी गुट पाकिस्तानी की धरती से संचालित हो रहे हैं। अमेरिका के कार्यक्रम के दौरान पाकिस्तान प्रधानमंत्री ने इमरान खान ने कहा कि उनकी पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ पीटीआई सरकार के सत्ता में आने से पहले रही सरकारों से देश में संचालित हो रहे आतंकवादी गुटों के खिलाफ कार्य करने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव था और अब ये जो ये लोग हैं उन पर कार्रवाई कर रहे हैं। अगर ये कार्रवाई अगर सक्सेसफुल होती है पाकिस्तान के लिए बड़ी बात होगी और भारत के लिए भी ये अच्छा रहेगा। तो देखिए ये जो कार्रवाई है जो उन्होंने खुद कबूला है कि इतने आतंकवादी पाकिस्तान में हैं जो कि ट्रेंड हैं और हथियारबंद हैं उनको कैसे संभालेंगे ये एक बड़ी खबर है। आइए एक रिकॉर्डेड कमर्शियल लेते हैं और कुछ और कमर्शियल्स की बात करेंगे और लोड कराएंगे गीत की तरफ और कुछ समाचारों की तरफ।
कनाडा आए हुए अरसा हो गया लेकिन अपनी फैमिली को बुलाने की हसरत अभी तक अधूरी है। ब्लू ओशन इमिग्रेशन जो कि स्पेशलाइज करते हैं एक्सप्रेस एंट्री, फेडरल स्किल्ड एंड ट्रेड वर्कर, स्टडी वर्क परमिट, स्पाउसल स्पॉन्सरशिप, सुपर वीजा, विजिटर वीजा, पेरेंटल स्पॉन्सरशिप और अपील्स में। लोकेटेड एट 7895 ट्रेनमेयर ड्राइव, यूनिट 211, मिसिसागा। कम टू योर ड्रीम नेशन थ्रू ब्लू ओशन इमिग्रेशन। कॉन्टैक्ट राजीव रामपा फ्रॉम ब्लू ओशन इमिग्रेशन, कॉल 416-500-8036।
यार पिछले 5 साल से बिजनेस जहां था वही खड़ा है,
तो ग्रो क्यों नहीं कर रहा है?
ग्रो करने के लिए पैसे चाहिए और पैसे तब आएंगे जब ग्रोथ होगी। समझ नहीं आती कहां जाऊं।
बैंक से लोन लो और प्रोग्रेस करो।
बैंक लोन? बैंक तो मुझे लाइन ऑफ क्रेडिट भी नहीं दे रहा, सिर्फ पेपर वर्क और भाग दौड़।
फिर टाइम वेस्ट मत करो बॉस, सीधा कनाडा वाइड फाइनेंशियल ग्रुप के प्रमोद गोयल से मिलो और समझो हो गई प्रॉब्लम सॉल्व।
पर यार,
पर वर्क कुछ नहीं, काम करते हैं चुटकियों में, फीस भी रीजनेबल, लेंगे भी काम होने के बाद। और कुछ
यार, ये थोड़ी देर जरा मेरा काम संभालो, मैं गोयल साहब से मिलकर आता हूँ।
For all kinds of business and commercial loans, call Canada Wide Financial Group 647-699-888, 647-699-888.
प्रोफेशनल रियल एस्टेट की किसी भी तरह की सर्विसेज के लिए आप संपर्क स्थापित कर सकते हैं टीम जीटी रियलिटी के। आप कॉल कर सकते हैं 6476400555 पर। टीम जीटी रियलिटी एक्सपीरियंस्ड और मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के लिए टीम जीटी आपकी सेवा में उपस्थित है। और किसी भी तरह के रियल एस्टेट की क्वेरी के लिए आप 6476400555 पर बात कीजिए। डीपी जैन CPA CGA, जैसा कि आप जानते हैं 30 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है और 13 साल से ज़्यादा वक्त से कनाडा में फुल टाइम प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक्सपर्ट हैं बिजनेस लोन्स में और लाइन ऑफ क्रेडिट्स और कमर्शियल मॉर्गेजेस में, बिजनेस कंसल्टिंग और एडवाइजरी में, कॉम्प्लेक्स कॉरपोरेट पर्सनल और बिजनेस टैक्सेज में, कंपनी कॉरपोरेशन, बिजनेस रजिस्ट्रेशन, CRA ऑडिट्स, HST, पेरोल मैटर्स एंड अकाउंटिंग में। आप उन्हें 416-305-0080 पर कॉल कर सकते हैं। डी पी जैन CPA CGA 416-305-0080। इंश्योरेंस की सही बात संजीव मलिक के साथ। इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर संजीव मलिक कहते हैं कि डू नॉट गो फॉर द चीपेस्ट इंश्योरेंस, गो फॉर बेस्ट बेनिफिट्स ऑफ इंश्योरेंस। एक्सपर्ट हैं विजिटर टू कनाडा मेडिकल इंश्योरेंस, सुपरविजन इंश्योरेंस, न्यू इमिग्रेंट इंश्योरेंस में, क्रिटिकल इलनेस, डिसेबिलिटी और लाइफ इंश्योरेंस में भी ग्रुप बेनिफिट्स इनके पास अवेलेबल हैं, जिसमें हेल्थ, डेंटल और विजन प्लान्स हैं। सभी तरह की मेजर जो कंपनीज हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, उनके साथ डील करते हैं संजीव जी। 6478834445 इंश्योरेंस की सही बात संजीव मलिक के साथ 6478834445। परवीन दलाल जी रेड स्टार रियलिटी सेंचुरी 21 के साथ हैं और 6472695666 पर आप इनसे बात कर सकते हैं अपनी सभी रियल एस्टेट की आवश्यकताओं के लिए। परवीन दलाल, परवीन विद डबल ई, parveendalal.com पर भी जा सकते हैं और इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, डिफरेंट लाइसेंसेज हैं इनके पास रियल एस्टेट से संबंधित और बैक होम एक्सपीरियंस भी है और माल्टन एरिया में खासकर इनकी बड़ी एक्सपर्टीज हैं। तो आप बात कीजिए इस परवीन दलाल जी से 6472695666 पर। आपके ऑटो, होम और कमर्शियल इंश्योरेंस के लिए वन स्टॉप सोर्स हैं कोमल भारद्वाज जी, आप उन्हें 416-262-0414 पर कॉल कर सकते हैं। ट्रैवल इंश्योरेंस के लिए भी इनसे संपर्क स्थापित किया जा सकता है। अच्छी सलाह और अच्छे कोट के लिए अभी फ़ोन उठाइए और बात कीजिए कोमल भारद्वाज जी से 416-262-0414। तो ये कुछ जो कमर्शियल्स थे वो हमने आपके साथ साझा किए हैं, और कनाडा से संबंधित एक छोटी सी न्यूज़ आपको और दे दें, और एक गाने के साथ हम आपको जाते हुए छोड़कर जाएंगे। बेहद खूबसूरत गाना है, कनाडा से संबंधित एक छोटी सी न्यूज़ है कि स्ट्रेस टेस्ट से रिलेटेड जो टोरंटो रियल एस्टेट बोर्ड है, उन्होंने ओटवा में एक लेटर लिखा है कि आप इसको थोड़ा ईज आउट कीजिए, और हो सकता है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो भी कम किया जाए। आने वाले समय में रियल एस्टेट में कुछ चेंजेस होने की उम्मीद है, तो अगर आप कुछ भी प्लान कर रहे हैं तो उस चीज़ को देखते हुए प्लान कीजिए, या किसी समझदार रियल्टर से जो कि आज की और बैंकों के और कैनेडियन फाइनेंशियल जो एक्टिविटीज़ हैं उनके ऊपर नज़र रखता है, अपना कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप उनसे बात कीजिए। और इस खबर के ऊपर पूरी तरह से बात अगले हफ्ते करेंगे, शायद उसके ऊपर कुछ और डेवलपमेंट आए। तो आइए इसके साथ ही हम आज का प्रोग्राम जो है वो एक गाने के साथ हम आपको ले चलते हैं और समाप्ति करने का प्रयास करते हैं। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। रेडियो भारत में आप 6476400555 पर आप संपर्क कर सकते हैं, अपनी सलाह दे सकते हैं, आप टेक्स्ट भी कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 6476400555 पर आप रेडियो भारत जो कि हर शनिवार शाम को 4 से 5 आपकी सेवा में उपस्थित होता है, भारत और भारत से संबंधित बातें हम किया करते हैं। आइए ये खूबसूरत गीत सुनते हैं जो कि अमिताभ बच्चन के ऊपर फिल्माया गया है।
Expressed on the preceding program may not necessarily be those of the owner or management of WTOR radio station.
Business run karna mushkil hai. So printer ki problem se ise aur mushkil kyun banaye? Faster aur smarter print karein apne naye HP OfficeJet Pro printer ke saath. और सब्सक्राइब करें HP Instant Ink, Canada's only ink subscription service, जो इंक आपके घर पहुंचाए खत्म होने से पहले। आज ही खरीदें न्यू HP Office Jet Pro Printer और सब्सक्राइब करें HP Instant Ink starting at $399 a month. Visit hp.ca या अपने नजदीकी HP retailer.
डाइवोर्स या कस्टडी दी लड़ाई जिंदगी दी सब तो औखी लड़ाई हुंदी है, क्योंकि तुसी उस शख्स नाल लड़ रहे हुंदे हो जिसने तुहाडा घर परिवार ते तुहाडे बच्चे सांझे ने। उस वक्त कई सवाल उठते ने कि प्रॉपर्टी किस कोल जाएगी, कस्टडी किस नु मिलेगी, ते जिंदगी दी सब तो प्यारी दौलत बच्चे किस कोल रहनगे।
SNS Lawyers को इन्हां सारे सवालां दे जवाब ते तुहाडे हक ले लड़न वास्ते लियाकत है। अपने हक जानने ले या सलाह लेने ले आज ही SNS Lawyers नु कॉल करो 416-655-2000।
G20 Canada Season 2 started in your city. दुनिया क्रिकेट के सुपरस्टार को देखिए एक्शन में। युवराज सिंह, शाहिद आफरीदी, क्रिस गेल, शुएब मलिक, ब्रैंडन मैकलम, डैरन समी, मोहम्मद हफीज, आंद्रे रसल, क्रिस लिन एंड मोर। जुलाई 25 टू अगस्त 11 एट CAA सेंटर ब्रैम्पटन। टिकट्स या सीजन पासेस के लिए विजिट gt20.ca। ग्लोबल T20 कनाडा, क्रिकेट कम्स होम।
Canada, be ready to witness this November 2019, Pakistan's biggest rock band returns to Toronto after 15 years.
This is Rehan Siddiqui presenting the Janoon Comeback Tour, only one show in Canada and that also in your city, Toronto. For group tickets, meet and greet, you can call me at 713-545-4115. Aap apni tickets ko select bhi kar sakte hain by going online to ticketmaster.ca.
ਕਬੀ ਨਾ ਭੂਲੋ ਅਜੀ ਜਿੰਨਾ ਮਿਟੋਣਾ ਹੋਵੇ ਥੋੜੀ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੱਚਦਾ ਥੋੜੀ ਦੇ ਫਰਨੀਚਰ ਨਾਲ ਕੋਣਾ ਕੋਣਾ ਸਜਦਾ
ਸੋਡੀ ਫਰਨੀਚਰ ਕੰਪਨੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੋਰੂਮਸ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਧੀਆ ਹੰਡਰਡ ਸਾਰ ਫਰਨੀਚਰ ਤੇ ਡੈਕੋਰੇਟਿਵ ਆਈਟਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤੇ ਵੇਚ ਰਹੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾ ਵਿਆਜ ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਚ 74 ਡੈਵਨ ਰੋਡ ਜਾਂ 142 ਕੈਨੇਡੀ ਰੋਡ ਸਾਊਥ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ ਦੋਨੋਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੰਬਰ 9058747171
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਦੇ ਬਾਨੀ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਦਰਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਪੁੰਜ ਗਰੀਬਾਂ ਰੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ 27 ਅਤੇ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗੀ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਸਧਾਰਨ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਉਪਰੰਤ 10 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਵੇਗੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 905-450-96